क्या होगा अगर पूरी तरह से एक अच्छा इंसान होना, मतलब सही मायने में, हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए सबसे बुरी बात हो?
सुनने में ये बात बिल्कुल बेतुकी लग सकती है
ना, मतलब एकदम बेतुकी लगती है। लेकिन आज हम मानव इतिहास के सबसे पुराने, मतलब सबसे रहस्यमय और शायद सबसे गलत समझे जाने वाले ग्रंथों में से एक के पन्ने पलटने जा रहे हैं।
बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का जो आधार है ना, वो है डॉक्टर जॉन वॉल्टन का द बुक ऑफ जोब सेशन 6।
हाँ, हमारा मिशन आज इस प्राचीन कहानी के उस असली उद्देश्य को समझना है जो सदियों से, पता है, हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हमसे छुपता रहा है।
सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का गणित बहुत सीधा होना चाहिए, मतलब कोई अच्छा काम करे तो उसे इनाम मिले और कोई बुरा करे तो उसे सजा मिले।
एकदम सही। लेकिन आज हम जिस कहानी पर बात कर रहे हैं वो इस पूरे सीधे गणित को जड़ से उखाड़ फेंकती है।
और मैं बता रही हूँ, ये बात मानव मन को बहुत असहज कर देती है।
क्यों?
क्योंकि ये जो सीधा गणित है ना, कि अच्छाई का फल हमेशा सुख होता है और बुराई की सजा, ये हमें एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा का एहसास कराता है।
हाँ, ये हमें ये भरोसा दिलाता है कि अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन का ये विश्लेषण हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है।
चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इस कहानी का जो आमतौर पर मतलब निकाला जाता है, डॉक्टर वॉल्टन उसे पूरी तरह से पलट देते हैं।
मतलब ज्यादातर लोग यही मानते आए हैं कि बुक ऑफ जॉब में जो मुख्य किरदार है यानी जॉब, वो कटघरे में खड़ा है।
हाँ, लोग सोचते हैं कि ये कहानी इस बारे में है कि एक इंसान कितनी भयंकर पीड़ा सह सकता है और फिर भी अपनी आस्था बनाए रख सकता है।
बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि यहाँ जॉब कटघरे में है ही नहीं, यहाँ तो असल में ईश्वर की नीतियाँ कटघरे में हैं।
ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है,
है ना? मतलब कल्पना करें कि आप एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जहाँ आप सारे नियमों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो अचानक आपके खिलाफ काम करने लगता है।
और ऐसे में कोई भी समझदार इंसान खुद पर शक नहीं करेगा, बल्कि वो गेम बनाने वाले की नीतियों पर सवाल उठाएगा।
ठीक यही बात है, वो बोलेगा कि ये नियम किसने बनाए, ये तो बिल्कुल अनुचित है। यहाँ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है। सवाल यह है कि दुनिया में ईश्वर के काम करने का तरीका क्या है, खासकर तब जब किसी बेकसूर व्यक्ति पर पहाड़ टूट पड़े।
यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल को समझने के लिए हमें कहानी के उस हिस्से में जाना होगा जहाँ सब कुछ शुरू होता है।
हाँ, जो कि पृथ्वी पर नहीं होता।
बिल्कुल। वो शुरुआत पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वर्ग के दरबार में होती है। इस दृश्य को अगर हम एक ब्रह्मांडीय अदालत यानी एक कॉस्मिक कोर्टरूम की तरह देखें तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाती हैं।
एक कॉस्मिक कोर्टरूम।
हाँ, वहाँ ईश्वर बैठे हैं और उनके सामने एक किरदार आता है जिसे मूल भाषा में चुनौती देने वाला या द चैलेंजर कहा गया है।
अच्छा।
इसे हम एक तरह का सरकारी वकील या डेविल्स एडवोकेट मान सकते हैं, जिसका काम ही सिस्टम में कमियां निकालना है।
समझ गया।
तो ईश्वर इस अदालत में जॉब की बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जॉब जैसा बेदाग और धार्मिक और सच्चा इंसान पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है।
और यहीं पर वो चुनौती देने वाला एक ऐसा सवाल दागता है जो पूरी कहानी की नींव रख देता है।
बिल्कुल।
वो पूछता है कि क्या जॉब बिना किसी स्वार्थ के ईश्वर को मानता है? मतलब सतह से देखने पर ऐसा लगता है कि वो जॉब के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा है, मानो वो कह रहा हो कि जॉब असल में एक लालची और स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ फायदे के लिए अच्छाई का नाटक कर रहा है।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन हमें इस सवाल की गहराई में ले जाते हैं। चुनौती देने वाला मुख्य रूप से जॉब के इरादों पर सवाल नहीं उठा रहा है।
तो फिर वो क्या कर रहा है?
अगर हम उसके तर्क के मैकेनिज्म को समझे तो वो असल में ईश्वर की नीति पर एक बहुत बड़ा प्रहार कर रहा है।
ईश्वर की नीति पर?
हाँ, चुनौती देने वाला कह रहा है कि आपने जॉब के चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार बना रखी है, आपने उसे अथाह दौलत दी है और अच्छा स्वास्थ्य दिया है, एक खुशहाल परिवार दिया है, तो फिर वो आपकी पूजा क्यों ना करे?
ओह, तो ये सीधा सवाल है ईश्वर की उस नीति पर जिसके तहत धर्मी और अच्छे लोगों को हमेशा समृद्धि और सफलता दी जाती है।
एकदम सही।
क्या अच्छे लोगों को लगातार इनाम देना वाकई एक अच्छी नीति है?
मतलब अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के मनोविज्ञान से जोड़कर देखें तो ये बात बहुत चुभने वाली लेकिन सच्ची लगती है।
हाँ।
क्या ये वैसा ही नहीं है जैसे हम किसी बच्चे की परवरिश कर रहे हो?
बिल्कुल वैसा ही है।
मतलब अगर एक बच्चे को हर बार सच बोलने पर या हर छोटे अच्छे काम के लिए एक बड़ी चॉकलेट दी जाए तो क्या वो बच्चा सच में अंदर से एक नैतिक इंसान बन रहा है? या हम अपनी इस नीति से अनजाने में उसे सिर्फ चॉकलेट का लालची बना रहे हैं?
सही कहा। क्या ईश्वर भी अच्छे लोगों को हमेशा सुख देकर उन्हें एक तरह से भाड़े के सैनिक बना रहे हैं जिनकी अच्छाई सिर्फ एक लेन देन है?
बिल्कुल, यही डॉक्टर वॉल्टन के विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। अगर कोई सिस्टम लगातार अच्छे व्यवहार के लिए भौतिक लाभ देता है तो वो अंततः उस व्यवहार के पीछे की प्रेरणा को भ्रष्ट कर देता है।
इंसान का ध्यान सच्ची धार्मिकता या निस्वार्थ भलाई से हटकर केवल उन फायदों पर चला जाता है।
हाँ, चुनौती देने वाला ईश्वर से यही कह रहा है कि आपकी ये नीति असल में सच्ची धार्मिकता को पनपने ही नहीं दे रही है। आप लोगों को सिर्फ अपने फायदों के प्रति वफादार बना रहे हैं, आपके प्रति नहीं।
अरे बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक आरोप
है ना?
इसका मतलब है कि जब तक इनाम मौजूद है तब तक कोई भी ये नहीं जान सकता कि किसी इंसान की अच्छाई असली है या नकली।
एकदम सही। और इस अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए डॉक्टर वॉल्टन उत्पत्ति यानी जेनेसिस अध्याय 22 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ देते हैं।
जेनेसिस 22।
हाँ, ये अब्राहम और इसहाक की प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वो अपने इकलौते बेटे इसहाक की बलि दे दें।
अरे, जो कि सुनने में बेहद खौफनाक और समझ से परे लगता है। कोई भी ईश्वर ऐसा क्यों कहेगा?
इसकी वजह उस वादे या उस इनाम में छिपी है जो ईश्वर ने अब्राहम को दिया था।
अच्छा,
ईश्वर ने वादा किया था कि इसहाक के जरिए ही अब्राहम का वंश आगे बढ़ेगा और एक महान राष्ट्र बनेगा। इसहाक वो अंतिम पुरस्कार था, वो फायदा था जिसके लिए अब्राहम ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था।
ओ, मैं समझ रहा हूँ।
अब ईश्वर उसे उसी अंतिम फायदे को खत्म करने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर वॉल्टन समझाते हैं कि यहाँ ईश्वर यह देखना चाहते थे कि क्या अब्राहम की भक्ति केवल उस वादे और उस इनाम पर टिकी है या उसका समर्पण सच में निस्वार्थ है।
मतलब जब तक इनाम मौजूद है तब तक भक्ति की असलियत छुपी रहती है।
बिल्कुल,
यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर डॉक्टर वॉल्टन की बात माने कि धर्मी लोगों को इनाम देना एक बुरी नीति है क्योंकि इससे वे लालची बन जाते हैं, तो फिर कहानी का दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा।
हाँ, वो बहुत जरूरी है।
चुनौती देने वाले के इस आरोप के बाद ईश्वर जोब के जीवन से सुरक्षा की वो दीवार हटा लेते हैं। जोब जो उस समय का सबसे अमीर, सबसे सुखी और सबसे भला इंसान था, एक झटके में सब कुछ खो देता है।
सब कुछ,
उसके जानवरों के झुंड लूट लिए जाते हैं, उसके नौकर मारे जाते हैं, और मतलब सबसे भयानक बात, एक भयंकर तूफान में उसके 10 बच्चे एक साथ मारे जाते हैं।
यस, ये सच में दिल दहला देने वाला है।
उसके बाद जोब का शरीर सिर से लेकर पैर तक दर्दनाक फोड़ों से भर जाता है। ये सिर्फ एक बुरा दिन नहीं था, ये पूर्ण विनाश था।
बिल्कुल।
और जब जोब इस अथाह राख और दर्द के बीच बैठता है तो वे ईश्वर की नीति पर एक बिल्कुल नया और विपरीत सवाल खड़ा करता है।
और जोब का वो सवाल क्या है अगर हम उसे इस चर्चा के संदर्भ में रखें?
जोब का नजरिया ये है कि हम तो आपकी टीम में हैं। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा भूखों को खाना खिलाया, न्याय का साथ दिया, फिर मुझे ये खौफनाक सजा क्यों मिल रही है?
सही बात है।
जॉब ये नहीं कह रहा कि मुझसे कोई पाप हो गया होगा, वो बहुत स्पष्ट है कि वो बेकसूर है। इसलिए वो सीधे सीधे ये आरोप लगाता है कि ईश्वर द्वारा अच्छे और धर्मी लोगों को दुख और कष्ट देना एक बहुत ही बुरी नीति है, ये अन्यायपूर्ण है।
ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और ये एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वाभाविक प्रतिक्रिया है।
हाँ,
और यहीं पर एक ब्रह्मांडीय दुविधा जन्म लेती है। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो ईश्वर अब पूरी तरह से एक धर्म संकट में फंस गए हैं।
कैसे?
देखिए, एक तरफ वो चुनौती देने वाला है जो तर्क दे रहा है कि धर्मी लोगों को सुख और समृद्धि देना गलत नीति है क्योंकि सिवे स्वार्थी बन जाते हैं और सच्ची धार्मिकता खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ जॉब है जो कह रहा है कि धर्मी लोगों को कष्ट और दुख देना गलत नीति है क्योंकि यह न्याय के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है।
बिल्कुल।
तो अब ईश्वर क्या करे? अगर वो सुख देते हैं तो इंसान की नियत पर शक होता है, अगर वो दुख देते हैं तो उनके खुद के न्याय पर शक होता है।
मतलब ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता।
एकदम सही कह रहे हैं आप।
एक तरफ इनाम की समस्या है और दूसरी तरफ सजा का अन्याय, तो इस असंभव सी उलझन को ये किताब कैसे सुलझाती है?
अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो इसका एकमात्र समाधान उस परीक्षा के तरीके में ही छिपा है।
अच्छा।
हमें यह याद रखना होगा कि चुनौती देने वाले ने कभी यह दावा नहीं किया था कि जॉब के इरादे 100% बुरे हैं। उसका बस ये कहना था कि हम यह जान ही नहीं सकते।
हाँ, जब तक सुख और समृद्धि मौजूद है तब तक इंसान की असली नीयत पर पर्दा पड़ा रहता है।
बिल्कुल। सच्चाई जानने की और सच्ची निस्वार्थ धार्मिकता को इस ब्रह्मांड में साबित करने की केवल एक ही स्पष्ट रणनीति बचती है।
और वो क्या है?
सारे फायदे और सारी सुख सुविधाएं वापस ले लेना।
अब एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ इस विचार को थोड़ी चुनौती देनी होगी।
हाँ बताइए।
मैं मान सकता हूँ कि सच्चाई को सामने लाने के लिए फायदे हटाना जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ एक दार्शनिक बहस को जीतने के लिए, ये साबित करने के लिए कि हाँ सच्ची धार्मिकता मौजूद है, किसी बेकसूर इंसान के 10 बच्चों की बलि चढ़ा देना सही है?
ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है।
उसकी पूरी जिंदगी को एक खौफनाक दर्द में धकेल देना, क्या ये भयानक रूप से क्रूर नहीं है? क्या डॉक्टर वॉल्टन ये समझाते हैं कि इस भारी कोलैटरल डैमेज को कैसे सही ठहराया जा सकता है?
ये शायद इस पूरी किताब का सबसे परेशान करने वाला और सबसे गहरा सवाल है। डॉक्टर वॉल्टन बहुत संवेदनशीलता के साथ ये स्पष्ट करते हैं कि हमें इस किताब को एक ऐतिहासिक न्यूज रिपोर्ट की तरह नहीं पढ़ना चाहिए।
तो फिर कैसे पढ़ना चाहिए?
इसे एक प्राचीन विजडम लिटरेचर या ज्ञान साहित्य के रूप में पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा और चरम थॉट एक्सपेरिमेंट है।
एक थॉट एक्सपेरिमेंट?
हाँ, इसका मकसद किसी एक व्यक्ति की त्रासदी का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि मानव धर्म शास्त्र की सबसे बड़ी खामी को उजागर करना है।
और वो खामी क्या है?
अगर ये ब्रह्मांड केवल लाभ और हानि के सिद्धांत पर चलता है, तो फिर सच्ची अच्छाई नाम की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है।
ओ, मैं समझ रहा हूँ।
अगर जॉब की धार्मिकता की असली धातु, उसका असली चरित्र तभी सामने आ सकता है जब उसे कोई फायदा न मिल रहा हो, तो ये परीक्षा केवल जॉब के लिए नहीं थी। ये पूरे ब्रह्मांड में इस बात को स्थापित करने के लिए थी कि इंसान लालच से ऊपर उठकर बिना किसी स्वार्थ के भी अच्छाई का रास्ता चुन सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी हमें उस चरम सीमा तक ले जाती है जहाँ से आगे हम खुद को कोई धोखा नहीं दे सकते।
बिल्कुल सही।
अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या हम सच में किसी से प्यार करते हैं या सिर्फ उनके पैसों से, तो पैसे का लेन देन बंद होना ही चाहिए।
हाँ,
ये कठोर है लेकिन इसका तर्क अकाट्य है।
एकदम अकाट्य है। और ये भी समझना होगा कि ये नीति किसी को सजा देने के लिए नहीं बनाई गई थी। जॉब के दुख का कारण उसका कोई पाप नहीं था, बल्कि ये उस सच्चाई को सामने लाने का एक कठोर साधन था जिसे समृद्धि ने ढक रखा था।
चलिए अब इस किताब के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ सब कुछ अपने चरम पर पहुँचता है, यानी किताब का अंत।
हाँ, सबसे अहम हिस्सा।
35 अध्यायों तक जॉब और उसके दोस्त बहस करते रहते हैं और फिर अंततः ईश्वर एक भयानक तूफान में से प्रकट होते हैं और जवाब देते हैं। तो इस सब का क्या अर्थ है? जब हम इस कहानी का अंत पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर आते हैं और बस अपना पावर कार्ड खेल देते हैं।
आप किस मायने में कह रहे हैं कि ईश्वर पावर कार्ड खेलते हैं?
मतलब जॉब इतने गंभीर और दयायज सवाल पूछ रहा है कि मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ, और जवाब में ईश्वर उसे ब्रह्मांड का टूर कराने लगते हैं।
हाँ,
वो जॉब से पूछते हैं कि जब मैं पृथ्वी की नींव रख रहा था तब तुम कहाँ थे? क्या तुम लेवियाथन नाम के उस भयानक समुद्री राक्षस को काबू कर सकते हो? क्या तुम सितारों को उनकी जगह पर बांध सकते हो? इसे देखकर कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि ईश्वर बस अपनी ताकत का दिखावा कर रहे हैं।
ऐसा लग सकता है। बिल्कुल,
मानो वो कह रहे हो कि मैं बॉस हूँ, मैंने ये सब बनाया है, तुम एक मामूली इंसान हो, इसलिए चुपचाप बैठो और मुझसे बहस मत करो। क्या अंत में ईश्वर बस डराकर जॉब का मुंह बंद कर रहे हैं?
ये एक बहुत ही स्वाभाविक निष्कर्ष लगता है, और सदियों से कई लोगों ने इसे ऐसे ही पढ़ा है, लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इस आम भ्रांति को बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ते हैं।
वो कैसे?
वो स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर यहाँ कोई पावर कार्ड नहीं खेल रहे। अगर ईश्वर को सिर्फ अपनी ताकत से डराना होता तो वो सिर्फ एक बिजली गिराकर भी जॉब को चुप करा सकते थे।
हाँ, ये बात तो है।
इसके बजाय डॉक्टर वॉल्टन कहते हैं कि ईश्वर यहाँ पावर कार्ड नहीं बल्कि करुणा और विश्वास का कार्ड खेल रहे हैं।
करुणा और विश्वास? लेकिन वो तो लगातार उन खौफनाक राक्षसों और ब्रह्मांड की विशालता का ही वर्णन कर रहे हैं ना, इसमें करुणा कहाँ से आ गई?
इसे ऐसे समझिए, ईश्वर जॉब को लेवियाथन और बेहमोत जैसे जंगली जानवरों और ब्रह्मांड की उन चीजों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चीजें उस सीधे गणित पर काम नहीं करती जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी।
अच्छा, मतलब अच्छाई का सुख और बुराई का दुख।
बिल्कुल, जंगली जानवर अच्छे और बुरे के सिद्धांत पर नहीं जीते। ब्रह्मांड बहुत ही जटिल, विशाल और रहस्यमयी है। ये कोई वेंडिंग मशीन नहीं है जिसमें आपने एक सिक्का डाला यानी कोई अच्छा काम किया और तुरंत आपको एक चॉकलेट यानी सुख मिल गई।
ओ, मैं समझ रहा हूँ। तो ईश्वर असल में ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम उतना सीधा और सरल नहीं है जितना जॉब या उसके दोस्त मानकर बैठे थे।
बिल्कुल, ईश्वर का संदेश ये नहीं है कि मैं ताकतवर हूँ इसलिए मुझसे डर कर रहो। उनका संदेश ये है कि मैं परम ज्ञानी और शक्तिशाली ईश्वर हूँ। ये ब्रह्मांड इतनी जटिलताओं से भरा है जो तुम्हारी सोच और दृष्टि से बहुत परे हैं।
सही कहा।
अगर इसे एक रूपक से समझें तो यह वैसा ही है जैसे एक माता पिता अपने छोटे बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हों कि वे उसे कोई कड़वी दवाई क्यों दे रहे हैं।
हाँ, बच्चा उस जटिल मेडिकल साइंस को नहीं समझ सकता।
बिल्कुल, माता पिता बच्चे को सिर्फ अपनी डिग्री दिखाकर डराते नहीं हैं, बल्कि वे उसे ये भरोसा दिलाते हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ईश्वर जॉब से यही कह रहे हैं कि जब तुम्हें परिस्थितियां बिल्कुल समझ में ना भी आ रही हों, जब तुम्हें लगे कि दुनिया का सारा न्याय खत्म हो गया है, तब भी तुम्हें मेरे ज्ञान पर विश्वास रखना होगा।
ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब मुझसे डरो और मुझ पर विश्वास करो के बीच का अंतर बहुत बड़ा है।
बहुत बड़ा है।
ईश्वर ये नहीं कह रहे कि जॉब के पास सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, वो बस ये बता रहे हैं कि जॉब के पास पूरी तस्वीर देखने का वो विस्तृत नजरिया नहीं है।
हाँ,
इंसान का कैलकुलेटर बहुत छोटा है और ब्रह्मांड का गणित बहुत बड़ा, इसलिए अंततः हमें उस ज्ञान पर भरोसा करना ही होगा जो हमसे बड़ा है।
एकदम सही, और यही इस पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। डॉक्टर वॉल्टन के इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक जगह समेटें तो इस विस्तृत चर्चा से ये स्पष्ट होता है कि बुक ऑफ जॉब का असली उद्देश्य हमें दुख से बचने का रास्ता बताना नहीं है।
तो इसका असली उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि जीवन के सबसे हताश, भयानक और अंधकारमय समय में भी ईश्वर को विश्वसनीय और भरोसेमंद कैसे माना जाए।
क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जब भी चीजें खराब होती हैं, खासकर जब बेकसूर लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है, तो हम किसी न किसी को दोष देना चाहते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
और ऐसे में सिस्टम बनाने वाला यानी ईश्वर हमेशा सबसे आसान लक्ष्य होता है।
सही कहा आपने। हम तुरंत उन नीतियों पर उंगली उठाने लगते हैं जो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन डॉक्टर वॉल्टन हमें याद दिलाते हैं कि हमें ईश्वर के काम करने के तरीके की उस गहरी जटिलता को स्वीकार करना होगा। हमें ये समझना होगा कि बिना कष्ट के या बिना फायदों को हटाए सच्ची और निस्वार्थ धार्मिकता कभी साबित नहीं हो सकती।
सही बात है।
जब इंसान इस कड़वी लेकिन सच्ची वास्तविकता को समझ लेता है तो ये समझ उसे उस समय भी अडिग रहने और भरोसा करने की ताकत देती है जब जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता।
आज की इस गहन चर्चा ने सचमुच चीजों को देखने के नजरिए को पूरी तरह से पलट दिया है। हमने शुरुआत एक ऐसे खेल की नियम से की थी जहां हम सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाते हैं। फिर हमने समझा कि कैसे लगातार सुख और सफलता देना भी एक भ्रष्ट नीति हो सकती है जो इंसानों को केवल फायदों का गुलाम बना देती है।
बिल्कुल।
और सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि दुख का आना हमेशा कोई सजा नहीं होता, बल्कि ये उस सच्ची धार्मिकता को सामने लाने का एक कठोर साधन हो सकता है जो शायद सुख के आवरण में कभी दिखाई ही ना देती।
एकदम सही।
अंत में, ये पूरी कहानी एक डराने वाले पावर कट के बारे में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे विश्वास के निमंत्रण के बारे में है।
ये एक ऐसी समझ है जो जीवन में आने वाले किसी भी बड़े संकट का सामना करने के लिए किसी भी इंसान की वैचारिक नींव को मजबूत कर सकती है।
बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही गहरा और थोड़ा असहज करने वाला सवाल उभर कर सामने आता है जिसे हम आज विचार करने के लिए छोड़ना चाहेंगे। आज की पूरी चर्चा का सार ये था कि अगर सच्ची अच्छाई और धार्मिकता को साबित करने के लिए ये जरूरी है कि बदले में मिलने वाले सारे इनाम खत्म कर दिए जाएं, तो क्या हमारे जीवन में मौजूद लगातार सफलता, सुख और समृद्धि असल में हमें हमारी अपनी नैतिक गहराई को पहचानने से रोक रही है?
सोचने वाली बात है।
क्या हमारा ये सुख ही जिसके पीछे हम दिन रात भागते हैं हमारी सच्ची पहचान और हमारी नीयत को छुपाने वाला सबसे बड़ा पर्दा है? इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।